शुरू कर लूँ? चलो ओके। विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हर कार्यक्रम में हम किसी न किसी विशेषज्ञ को, किसी न किसी अतिथि को लाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। हमारे श्रोताओं को उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसी आधार पर आधारित आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विषय विशेषज्ञ भारत से प्रोफेसर संजय कुमार जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
धन्यवाद कल्पना जी।
हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी पीएचडी जो है वो आधुनिकता और रघुवीर सहाय का रचना कर्म है, जो आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से प्राप्त की है। आपका एमफिल जो है वो अज्ञेय जी की कविताओं में प्रकृति पर आधारित है। और अगर हम आपके कार्यों को गिनने लगें, आपके अनुभवों को गिनने लगें, तो ये तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और हमारी बातचीत बीच में ही रुक जाएगी। हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि हिंदी, आप भी हिंदी से जुड़े हैं, हम भी हिंदी से जुड़े हैं और विशेष रूप से विश्व हिंदी सचिवालय में आप आए हैं, तो हमारा जो मुख्य चर्चा का विषय है वो भी हिंदी ही है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये बताएं कि आधुनिक हिंदी साहित्य और पाश्चात्य काव्य साहित्य का जो शिक्षण है उस पर आपने कार्य किया है, थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए करें।
मेरे सोचने समझने और विचार करने का जो क्षेत्र मुख्य रूप से रहा है
जी,
वो अज्ञेय, रघुवीर सहाय, ये जो हिंदी के दो अत्यंत महत्वपूर्ण लेखक हैं आधुनिक काल के, और फिर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इन तीनों विषयों पर मैं बरसों से
जी
सोचता रहा हूँ
जी।
और मेरा जो लेखन भी है वह इन्हीं के इर्द गिर्द है। और जहाँ तक शिक्षण का सवाल है, तो शिक्षक के रूप में मैं आधुनिक कविता पढ़ाता हूँ और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाता हूँ
जी। आधुनिक कविता बहुत सुनने में आती है, ये नाम भी चर्चा ही में आता है आजकल। कुछ आधुनिक कविता पर ऐसा प्रकाश डालें कि जो हमारे आज के विद्यार्थी हैं उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके।
जाहिर है आधुनिक कविता तो वह है जिसमें कि आधुनिक भावबोध मिलता है।
बिल्कुल।
और कविता ने एक लंबी यात्रा की है। कविता तो मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही जुड़ा रहा है। और आधुनिक दौर में हम देखते हैं कि कविता पहले तो छंद से मुक्त छंद की ओर आती है, फिर वो एक तरह से कहें कि छंद का रास्ता छोड़ देती है
जी।
लेकिन लय
का जाहिर है, बिल्कुल
बिना लय के कविता नहीं हो सकती, तो लय उसमें रहती है। तो मुख्य रूप से इसने एक तरह से जो छंद चला गया है, तो भाषा के स्तर पर
जी
इसने कविता लिखने के काम को आसान बना दिया है। लेकिन यहीं पर समस्या भी पैदा होती है, और समस्या ये पैदा होती है कि अगर इसे आसान समझकर आप सिर्फ लिखेंगे तो फिर कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि भाषा जरूर आसान हो गई है
जी।
लेकिन एक अच्छा कवि वही हो सकता है जो जिसकी कविता में अपने युग का संघर्ष, तनाव, या जिसे युगबोध कहते हैं
जी,
वह अभिव्यक्त हो।
कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊं आपको?
बिल्कुल।
मैंने भी चाहा था आसमां छूना, मैंने भी चाहा था आसमां छूना, आखिर बुलंदियों की चाहत किसे नहीं होती। मैंने भी चाहा था आसमां छूना, आखिर बुलंदियों की चाहत किसे नहीं होती। कोशिश भी की कि इंद्रधनुष के रंगों में समा जाऊं, स्वयं को वैसा ही सतरंगी बना पाऊं, और औरों की तरह उसने भी मुझे धोखा दिया। जिंदगी की कड़ी धूप में मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया।
बहुत अच्छा।
अब आइए कविताओं पर चलते हैं। जब कविताएं शुरू हो गई हैं तो कविताओं पर चलते हैं। आप, मैं देखती हूँ कि आपने अज्ञेय जी की प्रकृति काव्य, काव्य प्रकृति पर काफ़ी कार्य किया है। हम इस पर आपसे कुछ डिटेल में जानना चाहेंगे।
आगे के प्रकृति काव्य पर जब मैंने काम किया तो ये 1990 के दशक का शुरुआती वर्ष थे ये
जी।
और उस समय और मोटे तौर पर अभी भी एक हद तक अज्ञेय को लेकर असल में पहले 1940 और 50 के दशक में
जी
वैचारिक संघर्ष का माहौल था हिंदी में। और मेरी अपनी मान्यता है कि अज्ञेय का उस वैचारिक संघर्ष के कारण ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाया। मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी के बीच वैचारिक संघर्ष था। मार्क्सवादियों ने अज्ञेय के विरोध का रास्ता अपनाया और दूसरे अज्ञेय के जो प्रशंसक थे उन्होंने भी जो उन पर आलोचना लिखी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस जमीन पर जिस आधार पर वास्तव में अज्ञेय बड़े कवि कहलाने के अधिकारी हैं उस जमीन पर उन्हें नहीं खड़ा किया गया है। तो अब जैसे नई कविता के दौर में और खास करके मेरी जो यह पुस्तक है आलोचना की पुस्तक
जी,
तो मैंने उसमें यही बात मूल तौर पर रखी है कि अगर प्रकृति काव्य के दृष्टि से देखा जाए मतलब नई कविता के दौर में दूसरे कवियों ने भी प्रकृति पर कविताएं लिखी हैं
जी।
नागार्जुन हैं, मार्क्सवादी कवि भी हैं, नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं।